लक्षित चित्र योजना। रेखा चित्र केवल स्थूल चाक्षुष चित्र नहीं है, उसमें शब्द, स्पर्श, गंध, रस को भी समाविष्ट समझना चाहिए। काव्य में केवल चाक्षुष चित्र का, जिसमें शब्द, स्पर्श आदि का समावेश नहीं होता, विशेष मूल्य नहीं आंका जाता। ऐसे चाक्षुष चित्र प्रायः जड़ और मोटे रूप में वस्तुमुखी होते हैं, और वे सूक्ष्म इंद्रिय बोध को संतुष्ट करने में प्रायः अशक्त दीख पड़ते हैं। रेखा चित्रों में जिन वस्तुओं, मुद्राओं अथवा भंगिमाओं को अंकित किया जाता है, उन्हें इतना वास्तविक नहीं होना चाहिए कि कला में उनकी गणना ही न हो सके। वे सभी वास्तविकता का भ्रम ही पैदा करती हैं। इसे और स्पष्ट शब्दों में यों कहना होगा कि वस्तुतः कलात्मक चित्र वास्तविकता के किसी न किसी नए पक्ष का स्पर्श करते हैं। वास्तविकता का यह नया पक्ष कवि की रुचि, संस्कृति आदि से अच्छी तरह संबद्ध होता है। इन चित्रों से इसकी उद्देश्यता पर भी प्रकाश पड़ता है, पर उनकी सफलता इसमें नहीं है कि वे किन उद्देश्यों को प्रकट करते हैं, बल्कि इसमें है कि वे किस सीमा तक पाठकों के संवेदनों को जगाते अथवा उनके संवेगों को तीव्र बनाते हैं। कुछ रेखा चित्रों को देखिए। कंज नयन मंजन किए बैठी ब्यौरति बार, कच अंगुरिन बिच डीठ दए चितवती नंद कुमार। इस चित्र में 5 रेखाओं का प्रयोग किया गया है। कंज नयन मंजन किए बैठी ब्यौरति बार, कच अंगुरिन बिच डारी दए और चितवत नंद कुमार। ये सभी रेखाएं चित्र को पूर्णता प्रदान करती हैं। एक विशेष संदर्भ के अनुरूप अर्थपूर्ण उपकरणों को चुन लिया गया है। अपेक्षित उपादानों का कुशलता पूर्वक चयन और उनका सुरुचिपूर्ण संगुम्फन बिहारी के चित्रों की कलागत विशेषता है। ये दोनों बातें बिहारी के प्रायः प्रत्येक चित्र में मिलेंगी। कलागत चित्र और वास्तविकता में अंतर होता है। पहले में कलागत सत्य का उद्घाटन होता है, तो दूसरे में वैज्ञानिक सत्य का। कलागत सत्य में कलाकार की अपनी दृष्टि निहित होती है। इसकी दूसरी विशेषता यह होती है कि यह एक विशेष माध्यम, भाव, रेखा, रंग आदि में अपनी व्यंजकता में स्थिर रहता है, जबकि वास्तविक वस्तुएं समय के साथ परिवर्तित होती रहती हैं। यह चित्र हमारी ऐन्द्रिय चेतना को छूने में समर्थ है। इसकी व्यंजकता को ठीक से परखने के लिए पद्माकर का एक चित्र देखिए। छाजत छबीली छिति छहरि छरा के छोर, भोर उठी आई केली मंदिर के द्वार पर। एक पग भीतर असु एक देहरी पै धरे, एक कर कंज एक कर है किवार पर। पद्माकर का यह वर्णन बहुत कुछ फोटोग्राफी के निकट पहुंच गया है। अंतिम 2 पंक्तियों में यह जड़ हो गया है, पर बिहारी के उपर्युक्त चित्र में व्यवरत और चितवती ने चित्र को सजीव बना दिया है। अहे दहेड़ी जिन धरे, जिन तू ले ही उतार, नीके है छींके छुए ऐसे ही रही नार। पहले चित्र की अपेक्षा यह अधिक स्थिर है। अपनी व्यंजना के बावजूद भी इसकी ग्राम्यता ऐन्द्रियोत्तेजक हो जाती है। यहाँ पर बिहारी की चमत्कारिता देखी जा सकती है, संवेदनात्मकता नहीं। एक खलित बचन अधखुलित दृग, ललित स्वेद कन ज्योति, अरुण बदन छवि मद छकी, खरी छबीली होती। 2 लखी लखी अखियन अधखुलित, आंग मोरी अंगराय, आधिक उठ लेटति लटकी, आलस भरी जम्हाय। 3 चाले की बातें चली, सुनत लक सखिन के टोल, गोए हूँ लोयन हसत, बिकसत जात कपोल। संवेदना मूलक चित्र दूसरे हैं। प्रथम 2 मुद्राएं हैं, एक मद विह्वलता की, दूसरी रति श्रांता की। दोनों में कवि की पर्यवेक्षण शक्ति एवं चयन की सूक्ष्मता को देखा जा सकता है। यहाँ पर भी वही बारीकी है जो उस समय के चित्रों और वास्तुकला में प्रकट हुई है। कंज नयनी वाले दोहे में व्यक्त मुद्रा और इसमें व्यक्त मुद्राओं से स्पष्ट अंतर देखा जा सकता है। उसे चित्र में भी बांधा जा सकता है, पर ये चित्र की रेखाओं में नहीं अट सकते। इनके लिए चित्र नहीं, चलचित्र की आवश्यकता होगी। रेखाओं में खलित वचन कैसे चित्रित किया जाएगा? आधी खुली हुई आँखों, श्वेत कण की ज्योति, अरुण बदन छवि, मद विह्वलता आदि को रेखाओं में बांधा जा सकता है, पर खरी छबीली होती तो प्रकाश की उचित व्यवस्था द्वारा ही दिखाया जा सकता है। उसी तरह दूसरे दोहे में खलित बचन अधखुलित को तो रेखाओं में आंका जा सकता है, पर लखी लखी अखियन अधखुलत को नहीं। इसमें सभी भंगिमाएं रेखाओं में नहीं अंकित की जा सकती। एक को पढ़ने में दूसरे को छोड़ना पड़ेगा। दोनों चित्र काफी मनोरम हैं। तीसरे चित्र में रेखाएं कम हैं, पर द्वितीय पंक्ति प्रभावोत्पादकता में प्रथम दो चित्रों का अतिक्रमण कर जाती है। इसके अनुभवों में मानसिक प्रतिक्रियाओं को अत्यंत कौशल से ग्रथित कर दिया गया है, जो पाठकों को सहज ही संवेदनापूर्ण बना देता है। खलित बचन और लखी लखी अखियन द्वारा उल्लिखित चित्र अपने आप में पूर्ण हैं, पर वे किसी विशेष मानसिक भाव को उद्रिक्त नहीं करते, इसलिए वे पाठकों को अनुभूतिमय बना पाने में असमर्थ हो जाते हैं। दोहा संख्या 1-2 में मात्र भौतिक या शारीरिक तत्वों के अनुसंग में संगठित किया गया है। मनुष्य भाव जीवी प्राणी है, उसे केवल भौतिक तत्वों से ही संतोष नहीं होता, वह भाव जगत और अध्यात्म जगत की भी खोज करता है। कलात्मकता सर्जना में संवेदना कुष्ठ में फीलिंग का सर्वाधिक महत्व है। कला में इसकी अभिव्यक्ति दोहरी होती है। संवेदना किसी वस्तु विशेष के लिए होती है और एक विशेष प्रकार की होती है। दूसरे शब्दों में इसका आविर्भाव किसी प्राणी विशेष के संबंध में होता है और वैसा होने पर हम एक विशेष प्रकार की मनोदशा में पहुंच जाते हैं। यह संवेगात्मक प्रतिक्रियाओं से भिन्न होती है। संवेदना की भांति ही संवेगों का संबंध भी बाह्य जगत से होता है, पर दोनों का मुख्य अंतर यह है कि एक में निजीपन कोष्ठ में व्यक्तित्व का अधिक से अधिक परिहार दिखाई पड़ता है, तो दूसरी में निजीपन या व्यक्तित्व का संयोग। एक में बाह्य जगत के संबंध में आने पर जो प्रतिक्रिया होती है वह व्यापक और सार्वजनीन होती है, जबकि दूसरे में वह बहुत कुछ सीमित और निजी होती है। इसलिए संवेग में एक आवेगमयता होती है जो संवेदना में नहीं दिखाई पड़ती, पर उसमें संवेदना की गंभीरता और मर्मस्पर्शता उतनी नहीं आ पाती। पहली को क्लासिकल और दूसरी को रोमांटिक कविता कह सकते हैं। बिहारी क्लासिकल कवि हैं, उनकी अनुभूतियां संवेदनात्मक होती हैं। यह विशेषता उनके उपर्युक्त चित्रों में देखी जा सकती है। यह दूसरी बात है कि किसी में अनुभूति अधिक सांद्र हो उठी है, किसी में कम। यह मात्रा भेद कविता में सर्वत्र ही परिलक्षित होता है। इस मात्रा भेद का विवेचन करने के लिए फिर पीछे लौटना पड़ेगा। दोहा संख्या 3 संख्या 1-2 की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म, व्यंजक और प्रभावोत्पादक है। इसके उत्तर में भी कहना होगा कि उनमें अभिव्यक्त अनुभूति का संबंध जिस बाह्य जगत से है वह अधिक वास्तविक है, और उन दोनों का अंतर संबंध स्थापन इस ढंग से किया गया है कि पाठकों की चेतना उद्बुद्ध हो उठती है। प्रिय के भावी मिलन की कल्पना मात्र से अभी वास्तविक मिलन नहीं हुआ है। जो कायिक अनुभव उत्पन्न होते हैं वे सभी प्रसन्न भावों को व्यक्त कर देते हैं। ये अनुभव ही चित्र की रंग रेखा हैं और वे इतने समर्थ हैं कि पाठकों में तुरंत अनुकूल वेदनीय अनुभूति उत्पन्न कर देते हैं। कुछ लोगों की दृष्टि में इसमें कंजन नयनी की अपेक्षा अनुभूति का सूक्ष्मतर स्तर आकलित हुआ है। मेरी दृष्टि में कंजन नयनी में संबद्ध चित्र उससे अधिक प्रभाव उत्पादन क्षमता रखता है। केवल अनुभाव विधान से ही चित्र की श्रेष्ठता नहीं स्वीकार की जा सकती। चित्रों की उत्कृष्टता चित्र होने में नहीं है, क्योंकि चित्र साधन है, साध्य नहीं। साधन के रूप में उनकी सफलता असफलता का निरूपण किया जा सकता है। चित्रों के माध्यम से अनेक अनुकूल प्रतिकूल भावों को प्रभावपूर्ण ढंग से अंकित किया जा सकता है। कवि जितने ही सूक्ष्म और जटिल भावों को संतुलित कर सकेगा, चित्र उतना ही काव्योपम और श्रेष्ठ होगा। कंजनयन दोहे में एक विशेष मुद्रा में नायिका का नायक को देखना चित्र की अनेक भावनाओं को, आशा निराशा, राग विराग, चिंता उत्सुकता उत्कंठा को कुरेद देता है। जो उक्त दोहे द्वारा संभव नहीं है। बिहारी के इस प्रसिद्ध दोहे को भी देखें, कहाँ लड़ैते दृग करे परे लाल बेहाल, कहूँ मुरली कहूँ पीतपट कहूँ मुकुट बनमाल। एकमात्र अस्त व्यस्तता का चित्र नहीं है, आँखों की प्रभावोत्पादकता की अनुभूयात्मक सघनता का चित्र है, नायक की प्रेम विह्वलता का चित्र है। प्रेम विह्वलता का यह आतिश्य आँखों के सौंदर्य और प्रभाव का सूचक है। चित्रों में जहाँ सांकेतिकता कम और अविधेयात्मकता अधिक हो गई है, वे चित्र प्रायः निष्प्रभ हो गए हैं। भौं ऊंचे आचर उलटी मौर मौरी मुह मोर, नीठ नीठ भीतर गई डीठ डीठ सो जोरी। वर्ण चित्र कवि भावों को समृद्ध करने के लिए रंगों का प्रयोग करता है। रंगों के उपयोग से चित्र की व्यंजकता भी बढ़ जाती है। वह प्रकृति में बिखरे हुए नाना रंगों में से अपने अनुकूल रंगों का चयन करता है। कभी वह अनुरूप वर्ण योजना से नायिका के सौंदर्य को आकर्षक बना देता है, तो कभी विविध रंगों के आनुपातिक मिश्रण से सौंदर्य को उभार देता है। कभी वह प्रतिकूल वर्णों को सामने लाकर प्रिय के सौंदर्य को चटकीला बनाता है, तो कभी वर्ण परिवर्तन से उसकी मानसिक परिस्थिति का भावात्मक बोध कराता है। इस प्रकार के वर्ण चित्रों के निर्माण में बिहारी अद्वितीय हैं। अनुरूप वर्ण योजना, अनुरूप वर्ण योजना के अंतर्गत वे चित्र आते हैं जिनमें बहुत कुछ मिलते जुलते रंगों कोष्ठ में मैचिंग कलर्स का प्रयोग इस ढंग से होता है कि सौंदर्य में नवीन आकर्षण आ जाता है। भई जुतन छवि बसन मिली बरन सके सुन बैन, आंग गो ओप आंगी दुरी आंगी आंग दुरैन। नायिका संदली अंगिया पहने हुए हैं, उसके शरीर के अंग से कपड़े का रंग ऐसा मिल गया है कि कपड़ा लक्षित ही नहीं होता। अंग की चमक में अंगिया छिप गई है, किंतु अंगिया से अंग नहीं छिपता। अतः इस समय नायक को नायिका की अद्भुत छवि दिखाई पड़ेगी। नायिका की जिस अद्भुत छवि की व्यंजना इस दोहे से होती है, वह चमत्कारिक होने के साथ साथ रीतकालीन सामंती मनोवृत्ति के अनुकूल है। वर्णों का मिश्रण, वर्णों के मिश्रण में कवि के दुहरे दायित्व का निर्वाह करना पड़ता है। एक ओर उसे चित्र विशेष के लिए अनुकूल रंगों का चुनाव करना होता है और दूसरी ओर रंगों के आनुपातिक मिश्रण पर ध्यान देना पड़ता है। बिहारी और देव में विभिन्न रंगों के मिश्रण की कला विशेष रूप से दिखाई देती है। इनमें भी रंगों की छायाओं कुष्ठ में शेड्स ऑफ कलर्स की अद्भुत पकड़ में बिहारी की दृष्टि अचूक है। बिहारी के रंग परिज्ञान तथा उचित रंगों के मेल की क्षमता सत्सई के पहले दोहे से ही परिलक्षित होने लगती है। इस दोहे में राधिका की शोभा सौंदर्य और अंगद्युति को उभार कर सामने रखना ही कवि का मुख्य प्रयोजन है। इसी तरह कई रंगों के मेल से बांसुरी की ऐन्द्रधनुषी शोभा देखिए। अधर धरत हरिके परत ओठ डीठ पट ज्योति, हरित बांस की बांसुरी इंद्रधनुष रंग होती। वह संध की अवस्था को बिहारी ने धूप छांह के रंग में देखा है। छुटी न शिशुता की झलक झलक्यो जो बन अंग, दीपति देह दुहून मिली दीपति तापता रंग। धूप छांह के संकेत से वह संधि की शोभा कितनी भावपूर्ण हो गई है। विरोधी वर्ण योजना, विरोधी रंगों की योजना से भावात्मक चित्रों के उरेहने का प्रयास पूरे रीतकाल में कम मिलेगा, किंतु बिहारी ने इस ढंग से भी नायिका की छवि का पूर्ण अंकन किया है। छिप्यो छबीलो मुख लसय नीले अंचल चीर, मनोकला निधि झलमलय कालिंदी के नीर। सोन जुही सी जगमगय अंग अंग जोबन ज्योति, सुरंग कुसुम्भी चूनरी दुरंग देह दुति होत। प्रथम दोहे में नीले श्वेत रंग का विरोध है और दूसरे में पीले और लाल का। एक में उक्त विषया वस्तु प्रेक्षा और दूसरे में पूर्णालंकार द्वारा चित्र को खूब अच्छी तरह निखार दिया गया है। पहले में रूपाधायक अंश मुख्य है, दूसरे में संपूर्ण अंग की कांति। इस तरह नायिका की जगरमगर करती हुई अंग ज्योति उसके सौंदर्य को प्रतिभाषित कर जाती है। जहाँ केवल चमत्कार प्रदर्शन की दृष्टि से बिहारी ने रंगों का प्रयोग किया है, वहाँ चित्र काव्योत्कर्षक्षम नहीं बन पड़े हैं। जटित नीलमणि जगमगति सिंक सुहाई नाक, मनव अली चंपक कली बसी रस ले तु निशाक। नायिका की शोभा युक्त नाक में नीलम जड़ी सिंक जगमगा रही है, मानो भौंरा निशंक भाव से चंपे की कली पर बैठा रस ले रहा हो। इसमें नील पीत रंगों के विरोध से नायिका की शोभा वर्णित है, पर इससे कोई भाव चित्र नहीं उभर पाता। वर्ण परिवर्तन मन स्थितियों का प्रकाशक सहज कायिक व्यापार है। किसी मर्मस्पर्शी बाह्य घटना के प्रभाव हमारे ऊपर ऐसा पड़ता है कि उससे चेहरे का रंग तत्काल बदल जाता है। कभी वह लाल हो जाता है तो कभी पीला, कभी सफेद हो जाता है तो कभी काला। यह परिवर्तन इतना सहज और आकस्मिक होता है कि उससे घटना विशेष का संबंध जोड़ लेने में कोई कठिनाई नहीं पड़ती। मानसिक व्यापारों का शरीर से गहरा संबंध है। मानसिक व्यापार शरीर पर गहरे प्रभाव छोड़ जाते हैं। प्रेम प्रसंगों में जो रंग आता है वह लाल होता है। इस ललाई की गणना अनुभवों के अंतर्गत होनी चाहिए। पश्चिम के कवियों ने चेहरे की लज्जाजन्य ललाई का प्रचुर वर्णन किया है। रीतिबद्ध कवि प्रायः गिने गिनाए अनुभवों के चतुर्दिक चक्कर लगाते रहे, फिर भी उनमें वर्ण परिवर्तन के कुछ अच्छे उदाहरण मिल जाते हैं। बिहारी की नायिका का वर्ण परिवर्तन देखिए। पहिरत ही गोरे गरें यो दौरी दुतिलाल, मनो परस पुलकित भई मौल श्री की माल। नायक ने मौलश्री की माला सखी द्वारा नायिका के पास भेजी है। सखी नायिका को माला पहनाकर आई है और वह नायक से नायिका की दशा का वर्णन करती है। गोरे गले में माला पहनते ही वह लज्जा से लाल हो गई। यह ललाई उसकी प्रेमानुभूति की द्योतक है। लज्जा के कारण लाल होने का एक अत्यंत सुंदर चित्र देखिए। ज्यों ज्यों परसत लाल तन त्यों त्यों राखत गोय, नवल वधु डर लाजते इंद्र बधु सी होए मतिराम। नायिका न ओढ़ा है, नायक ज्यों ज्यों उसके शरीर का स्पर्श करता जाता है त्यों त्यों वह संकुचित होती जाती है। वह डर और लज्जा के कारण इंद्रवधु के सदृश बन जाती है। इंद्रवधु को छू दीजिए कि वह छुई मुई हुई। उसका लाल रंग नायिका की लज्जा को प्रकट करने में पूर्ण समर्थ है। इंद्रवधु का शब्द वस्तुतः उपलक्षित चित्र योजना के अंतर्गत आता है। इसके माध्यम से लज्जा के समस्त व्यापार विवृत हो उठते हैं। शरीर के रंग कोष्ठ में गोराई से नायिका की माला का रंग बदल गया है, पर अज्ञात यवना होने के कारण उसे इसका पता नहीं चलता। इस वर्ण परिवर्तन का अत्यंत नयनाभिराम चित्र बेनी प्रवीण ने खींचा है। काल्हई गूंथी बबा की सौ मैं गजमोती न की पहिरी अति आला, आई कहाँ ते यहाँ पुखराज की संग गई जमुना तटबाला। नहात उतारी हं बेनी प्रवीण हंसै सुनी नयनन बैन रसाला, जानत ना अंग की बदली सबसों बदली बदली कहे माला। नायिका के गले में जो गज मौतियों की माला पड़ी थी उसका रंग बदल गया है। इस पर वह बेहद हैरान है। बाबा की शपथ है कि मैंने अभी कल ही तो गज मोतियों की एक सुंदर माला पहनी थी, किंतु यह पुखराज की माला कहाँ से आ गई? कहीं यमुना तट पर स्नान करते समय किसी की माला से यह बदल तो नहीं गई? उस बेचारी मुग्धा को क्या पता कि शरीर की पीताभ छाया के कारण गजमुक्ताओं की श्वेत माला का रंग कुछ इस प्रकार बदल गया है कि उससे पुष्पराग मणियों की माला की भ्रांति होती है। बिहारी के उपर्युक्त दोहे में कोई दूती नायिका से नायक की प्रेमानुभूति का चित्र खींचकर नायक के मन की ललक को और भी अधिक बढ़ा देने का उपक्रम कर रही है। मतिराम के दोहे में नायिका को विशेष परिस्थिति में डालकर उसे छुई मुई होती हुई दिखाने का अभिप्राय उसके प्रति नायक के आकर्षण को और तीव्र बना देता है। बेनी प्रवीण के वर्ण परिवर्तन द्वारा नायिका के सौंदर्य अंकन का प्रयास उससे भिन्न नहीं है। सभी वर्ण योजनाओं द्वारा नायिकाओं के ऐश्वर्य दीप्त आकर्षक और उन्मादक सौंदर्य को प्रस्तुत किया गया है, जो एक ओर साहित्यिक परंपरा से अनुमोदित था तो दूसरी ओर तत्कालीन सामंती परंपरा से समर्थित। उपलक्षित चित्र योजना। पश्चिमी साहित्यालोचन में उपलक्षित चित्र योजना इमेजरी की काफ़ी चर्चा हुई है। इसके संबंध में कई सैद्धांतिक ग्रंथों का प्रणयन किया गया तथा कतिपय कवि एवं नाटककारों की व्यावहारिक आलोचना भी की गई। कवियों की अनुभूत्यात्मक गहराई की परख के लिए उपलक्षित चित्र योजना का विश्लेषण आवश्यक है। उपलक्षित चित्र योजना आलंकारिक फिगरेटिव होती है। पश्चिमी विचारकों ने इसके लिए रूपक को अधिक महत्व दिया है। रूपक के रूप में लाए गए अप्रस्तुतों से जो अस्पष्टता, संक्षिप्तता और अर्थ विस्तार दिखाई पड़ता है, वह अन्य प्रकार से लाए गए अप्रस्तुतों में नहीं। जहाँ तक काव्यगत सौंदर्य का प्रश्न है, अन्य अलंकारों के माध्यम से लाए गए अप्रस्तुत भी अपनी जगह विशेष उपयोगिता रखते हैं, पर तुलनात्मक दृष्टि से विचार करने पर रूपक की जो निजी विशेषताएं हैं उनकी ओर से आंखें नहीं मूंदी जा सकती। उपमा आदि अलंकारों में अर्थ की एक स्पष्ट सीमा होती है, पर रूपक में अर्थ की सीमा विस्तृत होने के साथ साथ कभी कभी प्रतीकात्मक भी हो उठती है। उपमा और रूपक के एक एक उदाहरण लीजिए। उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, उपमा। वह शेर है, रूपक। उपमा में मुख के लिए ले आया गया चंद्रमा अप्रस्तुत है। इस अप्रस्तुत द्वारा मात्र सौंदर्य की अभिव्यक्ति हो पाती है, किंतु रूपक के उदाहरण में शेर की वीरता, निर्भीकता, भयंकरता, तेजस्विता आदि अनेक गुणों का समन्वय देखा जा सकता है। उपमा में जो अप्रस्तुत ले आया जाता है उसका धर्म सीमित और रूपकगत अप्रस्तुत का व्यापक होता है। इस अप्रस्तुत के अनेकानेक धर्मों से हम पूर्व परिचित रहते हैं। इसके नामोच्चारण मात्र से स्मृति में बहुत से संवेदना सम्मिलित अर्थ स्वयं प्रकाशित हो उठते हैं। रूपक मुख्यतः दो कार्य करता है। एक तो वह पाठकों की इंद्रियानुभूति सेंसेशनल एक्सपीरियंस को जागृत करता है, दूसरे एक विचार को रूपायित करता है। रूपकात्मक अभिव्यक्ति का महत्वपूर्ण कार्य है और रूपात्मक भावों और विचारों की इंद्रियानुभूति की सीमा में आने वाले अप्रस्तुतों से संबद्ध करना। इसके साथ ही वह प्रतीक की सीमा का भी स्पर्श करता रहता है। अन्य अलंकारों की अपेक्षा यह जटिलतर संबंधों का प्रकाशक है। काव्यात्मक सम्मूर्तन के लिए आवश्यक है कि इसके लिए जो अप्रस्तुत ग्रहण किए जाएं उनका चुनाव परिचित जगत से हो तथा वे पाठकों की संवेदनाओं को आंदोलित करने में पूर्ण समर्थ हों। तीसरे एक उपचयात्मक प्रोपोर्शनल अर्थ संकेतित करते हों, पर उसकी पूर्ण अर्थवत्ता इनमें से किसी एक में न होकर उनके संबंधों में निहित है, किंतु यहाँ पर वह स्पष्ट करना शेष रह गया कि रूपालंकार तथा काव्यात्मक सम्मूर्तन में क्या स्पष्ट अंतर है। वास्तव में सम्मूर्तन रूपक मात्र न होकर रूपकात्मक मेटाफरिकल होता है। यह अंशों में प्रतीकवत तथा अंशों में संवेदनात्मक होता है। इनमें पदार्थ विशेष का उतना महत्व नहीं है जितना उनके द्वारा आविर्भूत संवेदना का। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि उपर्युक्त अप्रस्तुतों को ही सम्मूर्तन क्षम क्यों माना जाए। उपमा उत्प्रेक्षागत अप्रस्तुत भी तो सम्मूर्तन प्रस्तुत करते हैं और वे पर्याप्त रसक्षम भी होते हैं। यह कहना कि प्रतीकवत प्रयुक्त अप्रस्तुत सर्वाधिक काव्योपम होते हैं बहुत कुछ ठीक है, किंतु यह कि वे ही सच्चे काव्य की कसौटी है सर्वथा भ्रामक है। विशेष स्थित सिचुएशन और परिस्थिति सर्क्यूमस्टेंस जन्य काव्यात्मक स्थल बिना किसी अप्रस्तुत विधान के भी रसोद्बोधन करते हैं, तब प्रतीकवत व्यवहित अप्रस्तुत कोष्ठ में इमेजरी को उत्कृष्ट काव्य की कसौटी क्यों स्वीकार किया जाए। यूरोप में जिस सम्मूर्तन बिंब या इमेजरी पर बहुत जोर दिया गया। उसका सन्निवेश हमारे यहाँ के सादृश्य मूलक अलंकारों में कर लिया जा सकता है। इसलिए उपलक्षित चित्र योजना का पृथक विचार न करके उसे अलंकारों के भीतर गृहित कर लेना औचित्यपूर्ण मालूम पड़ता है।